ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां शुरतर्पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याशहस्तचरण श्रवण त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निरमाय शेते यदमूसु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले सोऽयम् रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसम् प्रयत्नये अपाययन्माम् मनभीप्सुमन्धम् कृपाम् बुधिर्यः परदुःखदुःखे सनातनम् तम् प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के सातवें अध्याय से सोलहवां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तत् कालस्य तत् तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुः तिरोदधे ऋषीणां अनुगृहीतम् माम् न अधुना अपि अजहात् स्मृतिः। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषीणाम् नुगृहीतम् माम् ऋषिणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषीणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृति। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। तत्तु कालस्य दीर्घत्वा स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषीणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृते। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वात् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृति। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतम् माम् नाधुनाप्यजहात् स्मृति। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रित्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतम् माम् नानुधाम माताजी वह धर्म तथा ज्ञान विषयक उपदेश तो निसंदेह कालस्य समय के दीर्घत्वात् दीर्घ होने के कारण, स्त्रीत्वात् स्त्री होने के कारण, मातुः मेरी माता का तिरोदध है, लुप्त हो गया, ऋषिणा ऋषि द्वारा अनुग्रहीतम आशीर्वाद से मां मुझको न नहीं अधुना आज अपि भी अजहात छोड़ पाई स्मृति स्मृति नारद मुनि के उपदेशों की। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता उन सारे उपदेशों को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतएव मैं नहीं भूल पाया। तात्पर्य, भगवद गीता 9:32 में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिह पाप यो नय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे भले ही निम्न कुल में उत्पन्न हो, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, परम गति को प्राप्त होते हैं। पाप योनि शब्द उन लोगों के लिए आया है जो शूद्रों से भी निम्न है, किंतु भले ही स्त्री पाप योनि न हो, लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण वह कभी कभी भक्ति के उपदेशों को भूल जाती है। परंतु जो पर्याप्त सुदृढ़ हैं, उनके भूलने का प्रश्न नहीं उठता। सामान्यतया स्त्रियां भौतिक भोग के प्रति आसक्त होती हैं, जिसके कारण वे कभी कभी भक्ति के उपदेश भूल जाती हैं। किंतु चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो, यदि विधिवत भक्ति का पूर्ण अभ्यास करती है तो भगवान के ही कथन के अनुसार वह भगवत धाम वापस जा सकती है। ते पियांति पराम गति, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य को भगवान के शरण ग्रहण करके विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तथा बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा। तब बिना भेदभाव के वह भगवत धाम वापस जा सकेगा। प्रहलाद महाराज की माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा के प्रति अधिक चिंतित थी और अपने पति को वापस आते देखने के लिए उत्सुक थी, अतएव वे नारद मुनि के भव्य उपदेशों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकी। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के उक्तियों पर विचार कर रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज अपने असुर साथियों को तत्व का उपदेश दिए, ज्ञान प्रदान करने लगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन उनके मन में कौतुक था कि प्रहलाद यह ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कब प्राप्त किया। प्रहलाद जी तो स्पष्ट कहे कि यह ज्ञान मैं नारद ऋषि से प्राप्त किया। प्रश्न था कि कब आप नारद ऋषि से प्राप्त किए, बाल्यावस्था से हमारे साथ हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए प्रहलाद महाराज सारी घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, और जैसा आप सुन रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज की मां कयाधु गर्भवती थी, उसी समय इंद्र उनको पकड़ करके ले जा रहे थे। नारद जी के सलाह से इंद्र उसको छोड़ दिए। जब इंद्र उसको पकड़े थे, ले जा रहे थे, तो तो बहुत विलाप कर रही थी, बहुत दुखी थी। कुररी मिव, जैसे कुररी पक्षी विलाप करती है वैसे वे विलाप कर रही थी। लेकिन जब इंद्र छोड़ दिए तो नारद जी के पास रहने लगी। और ऋषे अंति साकुतो भया, जब वह नारद जी के पास है तो उसका वर्णन करें अकुतो भया। इंद्र के साथ थी वो बहुत भयभीत थी, विलाप कर रही थी, लेकिन नारद जी के समीप है तो अकुतो भया, उसको कोई भय नहीं है। और नारद जी की सेवा करने लगी। नारद जी के वह खूब तत्परता से सेवा की, ऐसा वर्णन आप सुने ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती, परम भक्ति के साथ समर्पण के साथ नारद जी की सेवा कर रही है। लेकिन सती वह पातिव्रत्य धर्म का पूरा पूरा पालन करते हुए ऋषि की सेवा कर रही है, और सेवा कर रही है अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमाई इच्छा प्रसुप्त है। नारद जी की सेवा कर रही है परम भक्ति से, किन्ने इसके साथ ही उसके मन में दो इच्छा है। दो इच्छा को उल्लेख कर रहे हैं कि स्वगर्भस्य क्षेमाय, अपने गर्भ के क्षेम के लिए, अपने गर्भ की रक्षा के लिए, और इच्छा प्रसुप्त है, अपने इच्छा के अनुसार पति के आगमन के उपरांत प्रसव करने के लिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है उसकी इच्छा, उसकी प्रथम इच्छा है कि हमारा गर्भ सुरक्षित रहे और प्रसव में तब करूं जब हमारे पति वापस आ जाएं, तपस्या से वापस आ जाएं। तो कह रहे इसी कारुणिकस्तस्या प्रादाद उभय ईश्वर, नारद ऋषि ईश्वर हैं, समर्थ हैं, कुछ भी करने में समर्थ हैं। तो कह रहे हैं कि प्रादात उभयम, उस स्त्री के कयाधु के दोनों अभिलाषा को पूर्ण किए। उभयम, उभयम मतलब दोनों अभिलाषा। वैसे इस श्लोक में उभयम शब्द आया है तो इसको दो तरह से अर्थ कर सकते हैं। उभयम प्रादात धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च, धर्म के तत्व और ज्ञान को उभयम प्रादात मतलब दोनों को दिए। जैसा कल आप अर्थ सुने, दोनों को दिए मतलब माता को भी दिए और गर्भस्थ शिशु को भी दिए। लेकिन दूसरे ढंग से इसको अन्वय करें तो अर्थ निकलेगा ऋषि कारुणिकस्तस्या प्रादाद उभयमीश्वर। ऋषि के विषय में कह रहे हैं कि वे ईश्वर हैं, समर्थ हैं। कभी कभी व्यक्ति समर्थ भी होता है लेकिन हृदय में करुणा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाता है। कोई धनी व्यक्ति है, कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन जब तक धन देने की इच्छा नहीं है, कृपण है, तो धन रहने से क्या होगा, किसी को लाभ नहीं होगा। लेकिन ऋषि के विषय में कह रहे हैं कि ईश्वर है, वे समर्थ हैं और कारुणिक है, वे करुणा से युक्त हैं। करुणा का अर्थ है किसी के हित करने की इच्छा। वह स्त्री चाह रही है कि हमारे गर्भ का मंगल हो, हमारे गर्भ की रक्षा हो और हम अपनी इच्छा अनुसार प्रसव करूं, क्योंकि उसके पति दूर थे, वह अकेली है। ऋषि के मन में स्वाभाविक उसके प्रति करुणा है, तो करुणावश प्रादात उभयम उसके दोनों मनोरथ को पूर्ण किए, दोनों इच्छाओं को पूर्ण किए। और धर्मस्य तत्त्वम ज्ञानम च माम अपि उद्देश्य निर्मलम, उसके दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर दिए। क्षमता दे दिए और कह रहे हैं कि इतना पर ही संतुष्ट नहीं हुए। माँ की तो दो इच्छा है, गर्भ सुरक्षित रहे, गर्भ का मंगल हो, कल्याण हो, और अपनी इच्छा से प्रसव करे, इसको प्रदान कर दिए। इसके साथ ही माम अपि उद्देश्य, ये तो मेरी माता की इच्छा थी, उसको पूरा किए। और ऋषि इतने करुणा से युक्त हैं कि इतने पर ही संतुष्ट नहीं हुए, माम अपि उद्देश्य, मेरा ध्यान रह करके, मेरे को ध्यान में रह करके, धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च प्रादात, धर्म और धर्म के सिद्धांत और आत्मा देह के भेद के ज्ञान को भी प्रदान किए। तो यहां च से अर्थ लेंगे कि दो उसके मनोरथ को पूर्ण किए प्लस भक्ति और ज्ञान भी प्रदान किए, या उभयम का अर्थ ले सकते हैं कि ऋषि कारुणिक हैं, धर्म के तत्व और ज्ञान दोनों को प्रदान किए, और ऋषि उनको प्रदान किए। अब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातु स्तिरोधते, ज्ञान तो दोनों को दिए, माता को भी दिए, हमको भी दिए, लेकिन मां का ज्ञान तिरोहित हो गया, मां का ज्ञान तिरोहित हो गया। क्यों तिरोहित हो गया? कह रहे कालस्य दीर्घत्वात्, क्योंकि बहुत अधिक समय बीत गया। तो यह देखा जाता है कि समय हमारे स्मृति का लोप कर देता है। समय का काम ही यह है, समय का काल का स्वभाव ही है कि सबके रूप को बिगाड़ता रहता है। नाश करना काल का स्वभाव है। जब नारद ऋषि व्यास देव से अपने पूर्व जन्म की घटना को सुनाए, उन व्यास देव प्रश्न कर दिए, प्राक कल्प विषया में ता स्मृति ते सुरसत्तम, हे देवर्षि, ये जो आप बात कह रहे हैं तो पिछले जन्म की है, न ये सब व्यधात काल ऐसा सर्व निराकृति, और कैसे काल इसको छोड़ दिया? अरे काल का तो स्वरूप है कि वह सबको, सबके रूप को, सबके शेप को बिगाड़ता रहता है, सब कुछ विस्मृत कर देता है, बिगाड़ देता है, तो आपका ज्ञान कैसे सुरक्षित रह गया? काल का स्वरूप है विस्मृत कर देने। हम सब लोगों का अनुभव है कि हम कुछ चीज धारण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वह विस्मृत हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, वर्षा ऋतु का वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी करते हैं तो कह रहे हैं मार्गा बभ्यु संदिग्धा, वर्षा ऋतु में सब मार्ग संगीत संदिग्ध हो गए। मतलब जो जंगल के मार्ग हैं या खेत में मार्ग हैं, रोड की बात नहीं कर रहे हैं, जंगल में भी कुछ मार्ग होता है, खेत में भी कुछ मार्ग होता है, तो बरसात में कह रहे हैं, वर्षा का वर्णन करते हुए कि मार्गा बभोवु संदिग्धा, ये सारे मार्ग संदिग्ध हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे मार्ग जा रहा है, क्यों संदिग्ध हो गया? कह रहे हैं कि वो घास से ढक गया, त्रिणई छन्ना यह संस्कृता, बरसात में बहुत घास बढ़ते रहते हैं, अब घास को कोई काट नहीं रहा है, उसका संस्कार नहीं कर रहा है, तो घास बढ़ करके मार्ग को, रास्ता को आवृत कर लिए, और जब रास्ता को आवृत कर लिए तो सब संदिग्ध हो गया, कुछ स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि कौन रास्ता किधर जा रहा है। और इसके तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, ना भस ना अभ्यस्य माना श्रुतयो द्विजयी काल हतायुव, जैसे श्रुति का, किसी श्लोक का, मंत्र का अभ्यास न किया जाए, उसकी आवृत्ति नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण कोई मंत्र याद किया, श्लोक याद किया है और उसके अभ्यास नहीं कर रहा है, पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, तो द्विजय काल हता इव, तो भले ही वह याद कर लिया है लेकिन काल के प्रभाव से वह संदिग्ध हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा, व्यक्ति भूलने लगेगा। तो काल का प्रभाव होता है, विस्मरण हो जाता है। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तत्व काल से दीर्घत्वा, बहुत समय बीत गया, उपदेश दिए और इसके साथ स्त्रीत्वात्, हमारी मां स्त्री जाति की है इसलिए वह ज्ञान को भूल गई। स्त्री जाति की है, आशय यह है कि स्त्रियों का घर गृहस्थी में विशेष ही रुचि होता है, उनका मन उधर लग जाता है। और हमारी माँ की तो स्थिति यह थी कि वो बहुत भयभीत थी, हमारे विषय में चिंतित थी, गर्भस्थ शिशु के विषय में चिंतित थी, हमारे पिताजी के आगमन में के प्रतीक्षा में थी, तो उसका सारा ध्यान, उसका पूरा मन तो हम में और हमारे पिता में लगे हुए थे, पति और पुत्र में पूरा मन लगा हुआ था, इसलिए वह भूल गई। एक प्रश्न होगा तो आप कैसे याद रखिए, मान लीजिए कि उपदेश तो एक साथ हुआ, कह रहे हैं कि कालस्य दीर्घत्वात्, मेरी माँ का ज्ञान समय अधिक होने से तिरोहित हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको अलग से ज्ञान दिए थे। सच्चाई यह है, नारद ऋषि माम अपि उद्देश्य, नारद जी का मुख्य ध्यान प्रहलाद जी पर था ज्ञान देने पर, लेकिन ज्ञान तो दोनों को एक साथ दिए, अलग अलग नहीं दिए। ज्ञान देना था प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ में है, तो यही उपयुक्त विधि है कि माता को ही ज्ञान दिया जाए। इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु है उसी को कुछ कठिनाई है, कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में उसके स्वास्थ्य को सुधारना है, या गर्भ का जो शिशु है वह कुछ कमजोर है उसको पुष्ट करना है, उसको स्वस्थ करना है, तो ऐसा देखा जाता है कि दवा माँ को ही दिया जाता है, इंजेक्शन गर्भस्थ शिशु के शरीर में न लगा करके माता के शरीर में इंजेक्शन लगा देंगे, माता कुछ पौष्टिक भोजन लेती है, विशेष प्रकार का भोजन लेती है, तो उसका असर गर्भस्थ शिशु पर हो जाता है। तो गर्भस्थ शिशु को कुछ प्रदान करना है तो सबसे अच्छा विधि यही है कि माता को प्रदान कर दिया जाए। तो नारद जी को ज्ञान तो देना था प्रहलाद महाराज को, लेकिन वे गर्भ में हैं, तो इसलिए दोनों को ज्ञान प्रदान किए, माता को ज्ञान प्रदान किए और प्रहलाद जी को प्रदान किए, माता को ही ज्ञान प्रदान करने से प्रहलाद जी को ज्ञान प्रदान हो गया, मिल गया। तो कह रहे हैं ज्ञान एक साथ दिए, भाई समय तो उतना ही लगा, एक साथ ज्ञान हुआ, तो काल का प्रभाव आप पर क्यों नहीं आया? तो कोई कह सकता है कि वह स्त्री थी, स्त्री है ठीक है, लेकिन स्त्री और बालक में बहुत अंतर नहीं होता है। जैसे स्त्री का मन घर गृहस्थी में लगा रहता है, पति पुत्र में लगा रहता है, वैसे ही बालक का भी मन खेलने कूदने में लगा रहता है। मान लीजिए कोई स्त्री है तो आप भी तो बालक थे, आपका ज्ञान कैसे रह गया? तो कह रहे ऋषिणानुगृहीतम नाधुनाप्य जहात स्मृति, ऋषि का मुझ पर अनुग्रह था, उस अनुग्रह के कारण, कृपा के कारण हमारा ज्ञान तिरोहित नहीं हुआ। तो नारद जी का विशेष अनुग्रह है प्रहलाद महाराज पर, और उसी अनुग्रह के प्रभाव से ज्ञान तिरोहित नहीं हुआ। देखिए ज्ञान के विषय में जैसा मैं पहले श्लोक उद्धृत किया कि जब अभ्यास नहीं किया जाता है वह मंत्र विस्मृत होने लगता है। नाभ्यस्य माना श्रुति दुजई काल हताई वह अभ्यास करने से काल का प्रभाव कम रहता है, काल के प्रभाव को बचाया जा सकता है। तो किसी चीज को धारण करना है, किसी सिद्धांत में किसी ज्ञान को धारण करना है तो उसके लिए दो चीज आवश्यक है। एक तो अभ्यास आवश्यक है, अपना प्रयास आवश्यक है, इसके साथ ही आशीर्वाद का महत्व है। इस बात को समझना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई यंत्र है, टीवी है, क्या क्या है, हम देखते हैं दो सिस्टम होता है। कभी कोई लड़का टीवी को चालू करता है तो वहां से नहीं होता, मतलब दो रिमोट दो हम करते हैं, कोई रिमोट से उसको चालू कर देता है। अभी हम लोग खार घर जा रहे थे तो कार वाला व्यक्ति कह रहा था कि थोड़ा आपको कठिनाई होगी, क्यों तो इधर आपके सीट के भी सामने क्लच है, इधर क्यों क्लच है, तो कार सिखाने वाला है, ड्राइविंग सिखाने के लिए कार है, तो उस कार में कार को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है, ड्राइवर के पास भी क्लच ब्रेक है और जो बगल में बैठा है उसके पास भी क्लच ब्रेक है, दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ज्ञान हम जो अभ्यास करते हैं हमारे अभ्यास का भी महत्व है और गुरुजन के आशीर्वाद का भी महत्व है। गुरुजनों के शुभ भावना से हमारा ज्ञान सफल होता है। भगवान जब शिक्षा ग्रहण किए संदीपनी ऋषि से और उनको गुरुदक्षिणा प्रदान किए, गुरु जी बहुत संतुष्ट हुए, बहुत बहुत बात बोले, आपका जस फैले और उसमें एक आशीर्वाद दे रहे हैं, छंदांश अयात या मानी, आपका ज्ञान विस्मृत न हो, कभी ये फीका न पड़े। तो आशीर्वाद का बहुत महत्व है ज्ञान के विषय में, और केवल ज्ञान के विषय में नहीं, जहां तक भक्ति की बात है, चेतना की बात है, तो इस विषय में आशीर्वाद का, शुभ भावना का बहुत महत्व है। वास्तव में आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, सातवां स्कंध पढ़ रहे हैं, सातवें स्कंध का मुख्य विषय यही है। श्रीमद् भागवतम में आप दस विषय की चर्चा सुनते हैं तो उसमें एक विषय है उति, बहुत प्रसिद्ध है, श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुत्तय, जहां लिस्ट दिया गया है दस विषय का तो उसमें एक विषय है उति। वे उति का क्या अर्थ है, तो उत्तय वासना प्रोक्त, उस उति का अर्थ है वासना, उतयश्च उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्मानुसारिणी, जो हमारे हृदय में अभिलाषा उठती है, इच्छा उठती है, इसको वासना कहते हैं, ये कर्म करने की जो इच्छा है उसको वासना कहते हैं। तो ये जो इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, इसको उति कहा जाता है। तो उतिश्च वासना प्रोक्ता तत्त कर्मानुसारिणी, वासना कैसे चालित होता है, कंट्रोल कहां से है, तो कहें तत्त कर्मानुसारिणी, अब कर्म के अनुरूप वासना का नियंत्रण होता है, चालित होता है, जैसा कर्म करेंगे उसके अनुरूप हृदय में वासना का उदय होगा। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ वासना का उदय होगा, अशुभ कर्म करेंगे, पाप करेंगे तो अशुभ वासना का उदय होगा। तो लेकिन यह तो अपना सिस्टम हुआ, अपना कंट्रोल हुआ, इसके साथ ही एक कंट्रोल और है, अशुभा महताम कोपात शुभा महदनुग्रहात, हमारे कर्म का परिणाम होता है, हमारे कर्म का प्रभाव होता है हमारे वासना पर, लेकिन इसके साथ ही महत्पुरुष के अनुग्रह और कोप का भी प्रभाव होता है। श्रीधर स्वामी इस अध्याय के उपक्रम में लिखते हैं कि अशुभम महताम कोपात्। यदि किसी व्यक्ति के प्रति किसी महत्पुरुष में क्रोध आ जाता है, किसी व्यक्ति से महत्पुरुष कुपित है, तो उसका परिणाम होता है कि हमारे हृदय में अशुभ वासना का उदय होने लगता है। और यदि कोई महत्पुरुष से अनुग्रह करता है, आशीर्वाद देता है, कृपा करता है, तो उसका परिणाम होता है कि हमारे हृदय में शुभ वासना का उदय होता है। इसी बात को, ये उत्ति के सिद्धांत को, वासना के सिद्धांत को सप्तम स्कंध में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। सप्तम स्कंध में 15 अध्याय है, टोटल 15 अध्याय है। तो 5 अध्याय में यह दिखाया गया है कि कैसे महत्पुरुष के कोप से अशुभ वासना का उदय होने लगता है। 5 अध्याय में यह दिखाया गया है कि कैसे महत्पुरुष के अनुग्रह से शुभ वासना का उदय होता है। और 5 अध्याय में यह दिखाया गया है कि कर्म के अनुसार कैसे शुभ या अशुभ भावना का उदय होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हरेर द्वार पयोर यद वैकुंठे बसतोरपि। देखिए, जय विजय भगवान के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, कितने अच्छे स्थान में उनका निवास है। बसतो वैकुंठे, वे वैकुंठ में वास कर रहे हैं। लेकिन चतुः सनः रुषात, चतुष्कुमार के मन में क्रोध आ गया, तो भगवान के पार्षद में जो वैकुंठ में रहने वाले हैं, उनके हृदय में भी कितना अशुभ वासना उदय होने लगा। मारो काटो, उनके मन में कितना अशुभ वासना आ रहा है। भगवान को मारने की योजना कर रहा है, भगवान के भक्त को मारने की योजना कर रहा है, और उसके मन में था कि ब्रह्मा का विधान ठीक नहीं है। अन्यथा कर तुम, देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि वे आपके विधान को बदलना चाहता है। ब्रह्मा जी यह विधान किए हैं कि जो त्याग से रहेगा, तपस्या से रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा। जो अतिशय भोग में है, गर्हित कर्म में लगा, उसको नरक मिलेगा। लेकिन इस व्यवस्था को हिरण्यकश्यपु स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा कर तुम, इस व्यवस्था को बदलना चाहता था। उसके मन में था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अभी तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को दुख दे रहे हैं, और सारे नरक में जाएं, जीवन भर आगे भी दुख भोगते रहे, और जो भोग में लगा हुआ है उसको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के सुंदर विधान को बदलना चाहता था, देवताओं को कष्ट दे रहा था, ब्राह्मणों को कष्ट दे रहा था। तो अशुभ वासना के पीछे कारण है चतुष्कुमार का कोप। और प्रहलाद महाराज की स्थिति पर विचार कीजिए कि प्रहलाद महाराज असुर के पुत्र हैं, एक असुर के पुत्र हैं, लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से उनके मन में कितना शुभ वासना है, भगवान की भक्ति की इच्छा है, अपने भक्ति की इच्छा है, और उनके इच्छा है कि इस संसार में कोई भी दुख न भोगे। नृसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपने विषय में बहुत चिंता नहीं है, हम अपनी चिंता नहीं करते, हम तो आपके गुणों का गान करते हैं, उसी में आनंदित है। सोचे ततो विमुख चेत से, मैं तो उन व्यक्तियों के लिए चिंता में कर रहा हूँ जो माया सुखाय भर बहते विमुद्धा, वे मूर्ख जो क्षणिक सुख के लिए, कपट सुख के लिए, माया सुख के लिए बहुत भारी टेंशन लेकर के चल रहे हैं। और नृसिंह देव से प्रार्थना किए कि हम अकेले मुक्त नहीं होना चाहते हैं, हमको मुक्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जितने प्राणी हैं उनको सबको मुक्त कीजिए। और ऐसे संतों के मुख से मैं सुना हूं कि नृसिंह देव की कृपा से, प्रहलाद महाराज के भावना के प्रभाव से इस ब्रह्मांड के सारे लोग मुक्त हुए। तो प्रहलाद महाराज में कितना शुभ भावना है, शुभ वासना है, इसके पीछे कारण है देवर्षि नारद का अनुग्रह। तो अनुग्रह का बहुत महत्व है। अनुग्रह के महत्व को दर्शाते हुए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऋषिणानुगृहीतम माम, चूंकि ऋषि का मुझ पर अनुग्रह था इसलिए वह स्मृति आज भी हमको नहीं छोड़ पाई। वह ज्ञान यथावत में धारण किया हूं, तुम लोगों से बोल रहा हूं, और मेरी वाणी में यदि तुम लोग श्रद्धा रखोगे तो तुम लोगों को भी ऐसा ही ज्ञान हो जाएगा। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज यही बतला रहे हैं कि बहुत समय बीत जाने से और स्त्री होने से मेरी मां का ज्ञान लुप्त हो गया, लेकिन ऋषि के कृपा से हमारा ज्ञान आज भी सुरक्षित है। श्रील प्रभुपाद अवसर पाकर के लिखते हैं, अधिक घर गृहस्थी में आसक्त होने से, पति पुत्र की चिंता करने से स्त्रियों का बौद्धिक स्तर कम होने से कयाधु ज्ञान को भूल गई, लेकिन भक्ति का ऐसा स्वरूप है, भक्ति का ऐसा नेचर है कि भक्ति कहीं, भक्ति का उदय कहीं हो सकता है। मान लीजिए स्त्रियां घर गृहस्थी में आसक्त हैं, उनका बौद्धिक स्तर कम है, लेकिन इसके चलते ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भक्ति में किसी से कम रहेंगे। श्रील प्रभुपाद गीता का श्लोक उद्धृत करते हैं, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपिस्युः पाप यो नयः, जो मेरी शरणागति स्वीकार कर मेरा आश्रय ले रहा है, भले ही वे पाप जोनि है, आउटकास्ट हो या स्त्री हो या शूद्र हो, वैश्य हो, निम्न वर्ग का हो, तेपी अंति पराम गति, वे भी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति का ऐसा नेचर है कि इसका हेतु कोई दूसरा नहीं है, बाहर से इसको अर्जित नहीं करना पड़ता है। भक्ति का कारण भक्ति है, कोई दूसरा कारण नहीं है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ है कि कोई भी भौतिक स्थिति इसको दबा नहीं सकती है। भक्ति भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो जैसे भगवान कहीं अवतार ग्रहण कर लेते हैं, वैसे भक्ति भी किसी के हृदय में उदित हो सकती है, चाहे वो कम बुद्धि का हो, अधिक बुद्धि का हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कहीं भी भक्ति का उदय हो सकता है। तो भक्ति के विषय में स्त्रियां पूर्ण अधिकारी हैं, उनके अधिकार में कोई कमी नहीं है। और सच्चाई यह है, भक्ति के दृष्टि से स्त्रियों का स्वभाव शायद कुछ अधिक ही उपयुक्त है, क्योंकि समर्पण इत्यादि उनके स्वभाव में है, वे पति को समर्पण कर जाती हैं। तो वह गुण भक्ति में सहायता ही करेगा, समर्पण का गुण भक्ति में सहायता करेगा। और ऐसा देखा गया है कि स्त्रियां भक्ति में सर्वोच्च है। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे तो उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी का परिचय दिया गया है, वृष्णि नाम प्रवरो, वृष्णि वंशियों में वे श्रेष्ठ हैं। और वृष्णि वंशियों के विषय में कहा गया है इंगितज्ञा पुरु प्रौढ़ा, वृष्णि वंशियों का बौद्धिक स्तर ऐसा था कि वे लक्षण से ही ज्ञान प्राप्त कर लेते, किसी को देख करके उसके हृदय की बात को जान जाएंगे, इंगितज्ञ है, लक्षण से समझने वाले हैं। और ऐसे वृष्णि वंशियों में भी उद्धव जी श्रेष्ठ हैं, स्वयं कृष्ण के मंत्री हैं। कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं ही स्वीकार करते हैं कि हे उद्धव, तुम बुद्धि में अणु मात्र भी मुझसे कम नहीं हो। लेकिन वे उद्धव जी जो स्वर्ग से पढ़ करके आए हैं, शिष्य बृहस्पति साक्षात, स्वर्ग से पढ़े हैं, और करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं, ऑनलाइन नहीं, साक्षात डायरेक्ट जाकर के पढ़े हैं, बुद्धि सत्तम, वे बुद्धिमान है, सब श्रेष्ठ है, लेकिन वे उद्धव जी स्त्रियों का वंदना कर रहे हैं। स्पष्ट श्रीमद भागवतम में कहते हैं, वंदे नंद स्त्रीणाम पाद रेज रेणु अभिक्षण स, मैं तो नंद गांव के स्त्रियों के चरण धूली का निरंतर वंदना करता हूँ। वे क्यों वंदना करते हैं? जासम हरि कठोद गीतम पुनाति भुवनत्रय, अरे उनकी स्थिति ऐसी है, वे इतने महान हैं कि वे जो गीत गाई हैं, वो गीत का ऐसा प्रभाव है कि तीनों जगत को पवित्र कर सकता है। उद्धव जी उनके स्थिति को रियलाइज किए, जब ही उद्धव ब्रज में गए तो उनके नंद बाबा से भेंट हुई, नंद बाबा उनको बैठाए और एवं निशा सा ब्रुवतो व्यतीता, नंद महाराज कृष्ण के विषय में पूछने लगे और कृष्ण इतने प्रिय हैं कि वह लंबी रात बात करते बीत गई। एवं निशा सा ब्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद महाराज का और कृष्ण के दूत का ब्रुवतो आपस में बात करते करते पूरी रात बीत गई। गोप्य समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तुन समभ्यर्च दधि निमंथन, और तब तक गोपियां जग गई, रात बीत गई, भोर हुआ, गोपियां जग गई, गोपियां दीप जला करके और वास्तु पूजा करके दधि निमंथन, वे दधि मथने लगी। उद्धव जी दृष्टि पड़ रही है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तादीप दीप्तर मणिभिर विरेजु, और गोपियां बहुत सुंदर लग रही हैं, खास करके उनके आभूषण पर दीपक का लौ पड़ता है तो उससे बहुत वे सुंदर लग रही हैं। या सा दीप दीप्तर मणिभिर विरेजु, गोपियां जो आभूषण धारण की हैं तो उसके प्रभाव से दीपक से भी अधिक दीप्त हो रही हैं और वे गीत गा रही हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, वे भगवान के सौंदर्य का गीत गा रही हैं और दधि मंथन कर रही हैं, तो इतना जोर से गीत गा रही हैं कि दिवमस्त्र सद्ध्वनि, वह ध्वनि स्वर्ग तक जा रहा है, या दिवम का अर्थ है सौ धनुष, एक धनुष मतलब चार हाथ, तो 400 हाथ ऊपर आवाज जा रही है, और दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रित, और दधि मंथन कर रही, उससे जो शब्द निकल रहा है तो वह मिल करके गीत से मिल करके बहुत सुंदर लग रहा है। निरस्यते जेन दिशा मंगलम, इतना सुंदर ध्वनि हो रही है उस गीत का, उसे सारे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा है, मतलब सारे दिशाओं में जो लोग भी हैं उनका अमंगल दूर हो रहा है। तो ऐसे गीत देखे, जब गोपियां उद्धव जी के पास आई, भ्रमर को देख करके प्रजल्प करने लगी, तो उद्धव जी तो विद्वान व्यक्ति थे, उनके वाणी से उनके व्यवहार से गोपियों की स्थिति को समझ गए और उन पर अपना टिप्पणी दे रहे हैं, विचार करने लगे, आश्चर्य करने लगे। वे कहने लगे कि क्वेमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा, अरे इन स्त्रियों को देखिए, ये बनचरी स्त्रियां हैं, जंगली स्त्रियां हैं, गांव में रहने वाली हैं, ये कोई विश्वविद्यालय में सेमिनार नहीं अटेंड कर रही हैं, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रही हैं, ये बनचरी हैं, गांव में रहने वाली हैं, गोबर गोईठा करने वाली हैं, और क्वेमा स्त्रियों बनचरी व्यभिचार दुष्टा, इनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, और क्वेमा कृष्णे कोचैव परमात्मा ने रूढ़ भाव, लेकिन भगवान में इनकी भक्ति कितनी दृढ़ है, नन ईश्वरोन भजतो विदसो पि साक्षात, कह रहे हैं कि एकदम नितांत तो सत्य है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है अविदुष, भले ही वह कम ज्ञानी है, मूर्ख है, उसको कम ज्ञान है, विद्वान नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है तो भक्ति श्रेय तनोति, वह भक्ति कल्याण करेगा ही,
अगदराज युवोपयुक्त, जैसे बहुत श्रेष्ठ औषधि है और किसी को दे दिया जाए तो औषधि ज्ञान का विचार नहीं करेगा, कौन कितना ज्ञान रखता है इसका असर नहीं होगा, शायद शुगर इत्यादि का असर हो और दूसरी बात है, कम ज्ञान का व्यक्ति है दवा का प्रभाव कम नहीं होगा। यह अगध राज का अर्थ है अमृत, गद मतलब रोग होता है, अगध जो उसको दूर करे, तो रोग दुख दूर करने में सबसे श्रेष्ठ अमृत है, जरा मरण के भी समस्या को दूर करती है। तो कह रहे हैं कि श्रेय तनुत अगध राज युवोपयुक्त, जैसे किसी को अमृत पिला दिया जाए तो उसका प्रभाव आएगा ही, अमृत ज्ञान पर विचार नहीं करेगा। तो उसी प्रकार ननवीश्वरोन भजत, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन में लगा हुआ है, तो अब दिशो साक्षात श्रेय तनोती, भले ही वे कम बुद्धि का है, विद्वान नहीं है, उसका भी मंगल होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भले स्त्रियां कम बुद्धि के हैं, उनका चित्त आसक्त है, लेकिन वे भी भक्ति के अधिकारी हैं, और वे भक्ति करती हैं तो सर्वोच्च पद को, भक्ति में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकती हैं। तो गोपियों की स्थिति को देख करके उद्धव जी कहने लगे, स्त्रियां धन्य हैं, अरे हम लोग तो बेकार हैं, और उनको प्रणाम कर रहे हैं, वंदे नंद स्त्रीणाम पाद रेणु भिक्षण स, हम तो निरंतर इन स्त्रियों के चरण धोले की वंदना करते हूँ, जासम हरि करो कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम, अरे इनका कोई गीत गा ले, कोई गोपी गीत का पाठ कर ले तो उसी का प्रभाव होगा कि तीनों जगत पवित्र हो जाएगा। तो यह स्त्रियों की स्थिति है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान हम दोनों को दिए, लेकिन स्त्री होने से, समय बहुत बीत जाने से हमारी माँ का ज्ञान तिरोहित हो गया, लेकिन ऋषि के अनुग्रह से हमारा ज्ञान यथावत बना हुआ है, और यदि आप हमारी हमें श्रद्धा रखेंगे, श्रद्धा पूर्वक हमारे वचन को सुनेंगे, तो यह ज्ञान आपको भी प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। नौ बज गया, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना?
हरे कृष्णा। जब उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के इतने मित्र है, बृहस्पति के पास से सीखे हुए हैं,
फिर से बोलिए।
जब उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के सखा है और बृहस्पति के पास से सीखे हैं, तब क्या इतना ज्ञान होते हुए भी इतने जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, तो इतना ज्ञान होते वो सीखे क्या था? वो ज्ञान जो उनके पास पहले था, जो अभी गोप कन्याओं को प्रणाम कर रहे हैं, तो उससे पास पहले ये इतना ज्ञानी होते हुए इतना ज्ञान नहीं था कि कृष्ण भक्ति?
उद्धव जी स्वर्ग में पढ़ने के लिए गए थे, न्याय पढ़ने के लिए गए थे, लॉजिक पढ़ने के लिए गए थे, और खूब अच्छा से पढ़े। मथुरा में कृष्ण और उद्धव जी साथ में थे। एक दिन की बात है कि कृष्ण जमुना में स्नान करने के लिए गए थे, जाड़ा का दिन होगा या जो हो, वे दोनों बैठे थे तट पर। कुछ देर के बाद कृष्ण जमुना जी में प्रवेश किए और वहां देखे कि एक कमल का फूल आ रहा है, उनके पैर से लगा, उस कमल के फूल को उठा लिए। कमल के फूल को उठाए तो कमल के गंध से ही राधा रानी का स्मृति और गाढ़ हो गया, उद्दीपन का काम किया, और उस कमल पर राधा रानी का पत्र भी था। गोपियां विरह में थी, विरह में पागल हो करके कभी वो पक्षी से संदेश देती थी या कभी चिट्ठी लिख करके जमुना जी में ही डाल देती थी कि बहते बहते शायद कृष्ण को मिल जाए, और संयोग से मिल भी गया। चिट्ठी पढ़ करके और कृष्ण एकदम विह्वल हो गए, एकदम शुद्ध बुद्ध खो गए। अर्जुन बड़े हैरत में पड़े कि क्या कृष्ण, नहीं उद्धव बहुत हैरत में पड़े कि क्या कृष्ण को हो गया, अभी तो स्नान करने जा रहा था, अभी इसकी स्थिति इतनी बदल कैसे गई। और वे पूछने लगे, भगवान कुछ बतला नहीं रहे थे, लेकिन उद्धव सखा है बहुत आग्रह करने लगे। ओ भगवान साफ साफ बतला दिए कि हे उद्धव, गोपियों की स्मृति आने से हमारी यह स्थिति हो गई। उद्धव जी समझाने लगे कि अरे यार, पुरुष हो ना, सब प्रेम करता है, लेकिन इतना अधीर तो नहीं होना चाहिए। उन लड़कियों के प्रेम के चलते, गोप बालाओं के प्रेम के चलते तुम इतना अधीर हो रहे हो। और कृष्ण रियलाइज कर लिए कि उद्धव पढ़ करके आया है, लेकिन अभी कृष्ण प्रीति, ये जो प्रीति का विषय है, प्रीति संदर्भ अभी नहीं पढ़ा है, और इतना होनहार है, इतना बौद्धिक व्यक्ति है, इसको यह भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और जब प्रीति संदर्भ की पढ़ाई करनी है, लॉजिक पढ़ने के लिए, न्याय पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट टीचर है, बृहस्पति जी के पास गया, तो प्रीति संदर्भ पढ़ने के लिए भी इसको सबसे बेस्ट टीचर के पास, सबसे बड़े प्रोफेसर के पास भेजना चाहिए। और कृष्ण प्रीति के विषय में गोपियां ही रियलाइज सोल है, उनको अनुभूति है, वे सबसे बड़े प्रोफेसर हैं। तो गोपियों को संदेश तो देना ही था, यह भी एक दृष्टि है, लेकिन कृष्ण का यह भी आशय था कि इतना होनहार व्यक्ति थोड़ा इस प्रेम के विषय को भी समझ जाए। तो उद्धव को समझाने के लिए भी ब्रज में भेजे थे। वहां जाकर के उद्धव गोपियों के व्यवहार को समझ देख करके समझ गए कि इनके प्रेम का स्तर क्या है और केम कृष्ण इतना अधीर हो रहे थे। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।